તારીખ 17/5/1996 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 913 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 563
જો પારિગ્રાહ કરી ગયા છે, સંક્ષેપ છે, પુનરાવર્તન કર્યું. એ સભી જ્ઞાનીઓ કી એસી શિક્ષા હૈ, શિક્ષા માને ઉપદેશ. સભી જ્ઞાનીઓ કા ઉપદેશ હૈ કે આત્મા કર્મ કે ઉદય મેં યા પ્રારબ્ધ ઉદય અનુસાર, ઉદય કે સાથ સંબંધ કરકે પરિણામ મેં ક્લેશિત હોતા હૈ, દુઃખ કા અનુભવ કરતા હૈ. ઉસસે શાંત હોના મેરે કર્મ કે ઉદય મેં સંબંધ નહીં કરના, ઉદય કા સંબંધ નહીં કરના. ઓર અપને ઉપયોગ ઓર સ્વરૂપ મેં સ્થિર હોય જાય એસા કરના, અપને સ્વરૂપ મેં અચલ હોવા જાય એસા પુરુષાર્થ કરના, એસા ઉપદેશ હૈ. એસા લક્ષ્ય સ્વરૂપ કા લક્ષ્ય કરને કા ઉપદેશ હૈ, સ્વરૂપ કી ભાવના ભાને કા ઉપદેશ હૈ, ઓર ચિંતવના ભી સ્વરૂપ કી રખને કા ઉપદેશ હૈ. ઓર ઉસકા ઉપાય જો હૈ, વિધિ હૈ, वो भेद ज्ञान की है. भेद ज्ञान में तीन बात है. एक तो देहादि संयोग से भिन्नपना करना है, वो कैसे होता है कि उपयोग लक्षण से होता है. उपयोग ही एक साधन है જિસકે દ્વારા હમ દેહાદે સે અપના ભિન્નત્વ અનુભવ કર સકતે હૈ. બાત ઇસલિયે કઠિન હો ગઈ હૈ કે હમને દેહાદે અન્ય દ્રવ્ય ઓર અન્ય ભાવો મેં બહોત પ્રીતિ ઓર બહોત રુચિ રખી હૈ. અનંત કાલ જૈસે લંબે કાલ સે, અનાદિ સે વર્તમાન મે કિતના કાલ ગયા, અનંત કાલ ગયા. અનંત કાલ પર્યંત, અનંત કાલ પર્યંત એ આદત, એ પરિસ્થિતિ હમારી બની રહી કે હમારે સ્વરૂપ કો ભૂલ કરકે હમને દૂસરે પદાર્થો સચેત ઓર અચેત એસે દૂસરે પદાર્થો મેં પ્રીતિ ક્યા, પ્રેમ ક્યા, રુચિ ક્યા, રસ લિયા. ઇસલિયે હમકો ઉસસે ભિન્ન હોના કઠિન લગતા હૈ. લેકિન અશક્ય નહીં હૈ, કઠિન લગતા હૈ લેકિન અશક્ય નહીં હૈ. અગર હમ ચાહે પુરુષાર્થ કરે તો અવશ્ય હો સકતા હૈ. ઓર એ હમકો દુઃખ મિટાને કા ઓર સુખ પ્રાપ્ત હોને કા એક ઇલાજ હૈ. इसके सिवा जीव को सुख शांति होने का कोई अवसर नहीं है। धर्म मैंने सुख शांति, धर्म मैंने आत्मा को सुख शांति हुए, वही धर्म है। आत्म शांति वो आत्मा का धर्म है। तो भिन्न बना करने का है, उपयोग द्वारा देहादि से भिन्न अनुभव करना है, क्योंकि देह से अभिन्न अनुभव कर रहे हैं, खास करके साता असाता का। और शुभाशुभ परिणाम धारा है, उसको भी गौण कर देना है। शुभाशुभ परिणाम धारा को गौण करने से और ज्ञान वेदन को मुख्य करने से स्वभाव का ग्रहण होता है। जब स्वानुभव होता है तो दृष्टि से ग्रहण होता है। जब दृष्टि से स्वभाव का दृष्टि से स्वभाव का ग्रहण होता है, तब पर्याय मात्र पर से दृष्टि छूट जाती है। दृष्टि मैंने श्रद्धा, श्रद्धा का परिणमन करने का गुण ऐसा है कि वो पर्याय का स्वीकार करती है, ग्रहण करती है, तो द्रव को छोड़ देती है और स्वभाव का ग्रहण करती है तो पर्याय को छोड़ देती है। दोनों को एक साथ ग्रहण होता नहीं। अनादि से पर्याय दृष्टि हमारी है। अनादि से पर्याय दृष्टि होने से पर्याय दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है, क्यों कि एक समय की पर्याय जितना हमारा स्वरूप तो है ही नहीं। हमारा स्वरूप एक समय के पर्याय जितना नहीं है, वो भी हमारी अवस्था तो विकृत है, ऐसा तो हमारा स्वरूप है ही नहीं। न विकृत विकृति हमारा स्वरूप है, न एक समय पूर्ति अनित्यता के पर्याय जितना हमारा स्वरूप है। हमारा मूल स्वरूप तो शाश्वत है और अविकृत सहज स्वभाव रूप है। ऐसा स्वभाव की दृष्टि में पर्याय मात्र की दृष्टि छूट जाती है। चाहे पर्याय शुद्ध हो तो भी, शुभ अशुभ की पर्याय की तो गिनती दृष्टि को है ही नहीं, लेकिन शुद्ध पर्याय को भी स्वीकार दृष्टि नहीं करते, खुद का भी, क्योंकि दृष्टि खुद पर्याय है, प्रधान खुद पर्याय है, वो भी अपने आप का स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसका गुण ऐसा है कि एक का स्वीकार करे, चाहे पर्याय का चाहे स्वभाव का, तीसरी बात नहीं है उसमें। प्रवचन सार में ज्ञेय अधिकार शुरू करते हुए वराणु गाथा में ये बात आचार्य महाराज ने कही कि आत्मा एक पदार्थ है जो द्रव गुण और पर्यायमय है, फिर भी द्रव गुण पर्याय रूप अस्तित्व होने पर भी जो पर्याय में मुंड है वो पर समय है। पर्याय मुंडाहा पर समयाहा, ये सूत्र दिया है। और हम हमारे अनुभव को देख लें, तलाश करके, जांच करके समझ सकते हैं कि हम हमारे वर्तमान अवस्था में मुंड है कि नहीं है। जो भी हालत, जो भी अवस्था वर्तती है प्रत्येक वर्तमान में, हम वैसा ही अपने को अनुभव कर लेते हैं। राग हुआ तो रागी, मनुष्य हुआ तो मनुष्य, नाम दे दिया तो उस नाम वाला, काम दे दे तो काम वाला, स्थान दे दिया तो स्थान वाला। ये मुंडपणा है। मुंडपणा इसलिए बताया आचार्य श्री ने कि ऐसी पर्याय दृष्टि जीव को संसार में परिभ्रमण कराती है। ये पर्याय दृष्टि ही अनंत प्रकार के दोष के उत्पाद करने में मूल कारण है। अनंत प्रकार के दोष होते हैं जीव की अवस्था में, चाहे विश्व का विग्रह हो, लड़ाई हो, पर्याय दृष्टि के बिना नहीं होता। चाहे कोई खून खराबा करता है पर्याय दृष्टि के कारण, चाहे कोई कत्ल खाना लगाता है पर्याय दृष्टि के कारण, और कोई चाहे जो भी संसार की प्रवृत्ति करता है पर्याय दृष्टि को लेकर के करता है कि नहीं करता है, देख लो। आचार्य महाराज का ये कथन सारे जगत की स्थिति को साबित करते कर देता है। तो पर्याय दृष्टि से कैसे संसार चलता है और संसार में पर्याय दृष्टि से कैसे कैसे अनिष्ट परिणाम होते हैं, वो पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए पर्याय मात्र को दृष्टि नहीं देखेगी, छूटेगी तो पर्याय मात्र को नहीं देखेगी, ज्ञान में गौण हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान में तो मुख्य गौण करने का स्वभाव है। तो रागादि भाव को गौण कर दिया, ज्ञान स्वभाव को मुख्य करके, स्वभाव की मुख्यता में रागादि विभाव गौण होते हैं और स्वभाव की दृष्टि में पर्याय दृष्टि बिल्कुल छूट जाती है। दृष्टि में मुख्य गौण नहीं है, श्रद्धान में मुख्य गौण नहीं होता, उसका मुख्य गौण करने का स्वभाव नहीं है दृष्टि का। इसलिए यहां आत्यंतिक वियोग ऐसा शब्द प्रयोग किया है, आत्यंतिक वियोग करने की बात है। और यही सन्मार्ग है, मैंने सत्य मार्ग है, यही जिनेश्वर का मार्ग है। ये दृष्टि का परिणमन कैसा होता है, दृष्टि का विषय कितना होता है, वो बात जिनागम के अलावा कोई अन्य मत के शास्त्र में नहीं है। गुण दोष की चर्चा करते हैं, अन्य धर्म वाले भी गुण दोष की चर्चा जहां तक बुद्धि की पहुंच है वहां तक करते हैं। करते हैं मतलब जहां तक बुद्धि की पहुंच है वहां तक करते हैं। लेकिन ये दृष्टि का जो विषय है और जो स्वानुभूति है, ये बौद्धिक स्तर से पार जाकर के एक विषय है कि जहां विकल्प का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय जो आत्म स्वभाव है वो भी निर्विकल्प है, दृष्टि भी निर्विकल्प है और जो स्वानुभव होता है, शुद्धोपयोग होता है, वो भी निर्विकल्प होता है। और वो अनुभव का विषय होने से शब्दातीत है। शब्दातीत क्या है? चिंतन से भी पार है, अचिंत्य है। कैसा है? अचिंत्य है। इसलिए ग्रंथों में बहुत मर्यादा में वो विषय चलता है। ज्ञानी के प्रत्यक्ष समागम में वो विषय विशेष रूप से समझ में आ सकता है। इसलिए अनुभव होने के लिए और दृष्टि प्राप्त करने के लिए ज्ञानी का प्रत्यक्ष सत्समागम अनिवार्य है, जरूरी है। सिर्फ ग्रंथों से कोई इस तरह का ज्ञान कर ले, स्वभाव का ज्ञान कर ले, अनुभव कर ले, दृष्टि कर ले, वो बात संभव नहीं है। क्योंकि अनुभव लिखने में नहीं आता, कलम में नहीं आ सकता, बोलने में थोड़ा और अभिव्यक्त हो सकता है और चेष्टा में थोड़ा और अभिव्यक्त हो सकता है। तो दूसरे को समझ में आए, जिसको अनुभव नहीं है उसको अनुभव कराने के लिए जितनी समझ चाहिए, वो समझ की मर्यादा प्रत्यक्ष वचन योग और प्रत्यक्ष जो चेष्टा है, स्वानुभव की जो चेष्टा है, उनकी आवश्यकता रहती है। प्रत्यक्ष वचन योग और लेखनी में आया हुए वचन योग में अंतर है, अभिव्यक्ति में अंतर रहता है। इसलिए जरूरी बातों में पर्सनल मीटिंग करती हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से पूरी बात समाप्त नहीं होती है। संसार में भी, सांसारिक कार्यों में भी प्रत्यक्ष मिलने की जरूरत क्यों पड़ती है? बात लिखने से, टेलीफोन से पूरी नहीं होती है, तो रूबरू जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, जरूरी बात। संसार के कार्य तो मामूली कार्य है, फिर भी प्रत्यक्ष गए बिना कितने काम सलटते नहीं, ऐसा हमारा अनुभव बोलता है कि नहीं बोलता है? तो ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट कार्य है, इससे आगे कोई, इस कोटि का कोई कार्य नहीं है, इसके बराबरी का कोई कार्य नहीं है। इसलिए अनुभवी पुरुषों का प्रत्यक्ष योग का बहुमूल्य शास्त्रों में भी किया है, शास्त्रकारों ने, अनुभवी पुरुषों ने भी वो बात कही है कि इसके बिना निस्तार नहीं है। यह सन्मार्ग को गवेषता प्रतीत करने को इच्छता और उसको प्राप्त करने को इच्छता, ऐसे आत्मार्थी जन को ऐसा सन्मार्ग, जो ऊपर कहा ऐसा आत्मकल्याण का सन्मार्ग, जिसको भेद ज्ञान की प्राप्ति करनी हो, वेद ज्ञान की विधि सीखनी हो, वेद ज्ञान का प्रयोग सीखना हो, उनको वो प्रयोग देखना पड़े। चाहे कितनी भी पात्रता हो, उत्कृष्ट कोटि की पात्रता हो, जैसे सोगानी जी, उत्कृष्ट कोटि की पात्रता लेकर के स्वामगढ़ पहुंचे थे, लेकिन गुरुदेव को राग और ज्ञान का भिन्न परिणमन करते हुए देखा और जो करते थे वो समझाते हुए देखा। सिर्फ समझाते हुए नहीं, वो करते थे, परिणमन करते थे और साथ साथ अपने परिणमन को समझाते थे। वो प्रयोग देखा, वो प्रयोग वो करने को समर्थ हुए। योग्यता बहुत थी तो तात्कालिक वो प्रयोग वो कर सके। वो प्रयोग जिन्होंने नहीं देखा उनको वो प्रयोग नहीं हुआ। जब सुगानी जी ने वो प्रयोग देखा और वो प्रवचन के काल में सुना तब दूसरे भी सुनने वाले तो थे, लेकिन जिन्होंने प्रयोग नहीं देखा उनको परिणमन नहीं आया। सुना तो सबों ने, और भेद ज्ञान की तो बात गुरुदेव द्वारा बहुत बहुत प्रसिद्ध हुई, फिर भी नजर चाहिए प्रयोग देखने की। ये अंतरंग विषय है ज्ञानी के परिणमन का। उतनी अंतर्दृष्टि हुए बिना, यानी उतनी अंतरात्म दृष्टि हुए बिना ज्ञानी की पहचान रूप पहला संकेत नहीं होता। जिसको पहला संकेत नहीं है उसको दूसरा संकेत स्वरूप की पहचान वाला नहीं होता। तो जिसको वो दोनों पूर्व भूमिका नहीं है उसको सम्यक दर्शन, वास्तविक परमार्थ सम्यक दर्शन नहीं होता, यानी स्वरूप दृष्टि की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी की पहचान होने के लिए दृढ़ मुमुक्षुता चाहिए, यानी पहला संकेत के लिए दृढ़ मुमुक्षुता चाहिए। उपदेश को अमल में, अमलीकरण में ले जाने की तत्परता चाहिए और अंतर्मुख होने की तीव्र अभिलाषा रूप अंतरात्म वृत्ति चाहिए। ये तीन बात कृपालु देव ने 674 नंबर के पत्र में किया है। संकेत का बीज वाला आर्टिकल में वो बात लिया है, आत्म जागृति में आ गया। तो पहला संकेत होता है उतनी निर्मलता आने के बाद जो भेद ज्ञान का प्रयोग करता है, प्रत्यक्ष योग में प्रयोग देख करके उनको स्वरूप का भावभाषण रूप दूसरा संकेत आता है। उस स्वरूप की पहचान है। और जब दूसरा संकेत आता है तब जीव के ज्ञान और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप सम्मुख होते हैं। चैतन्य वीर्य की स्फुरणा होती है और ज्ञान के साथ होने से उसको ज्ञान बल भी कहने में आता है। और फिर स्वानुभव होता है तो स्वरूप की दृष्टि प्राप्त होती है। उसी काल सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारी प्राणी, मोक्ष मार्ग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा भी स्वरूप की हुई, स्वानुभव भी स्वरूप का हुआ और उपयोग की स्थिरता, लीनता और वितरागता भी चारित्र गुण में हो गई। तीनों गुण एक रूप हो गए, अभेद हो गए। ऐसे सन्मार्ग को जिसको अनुभव करना है, ऐसे सन्मार्ग का जिसको अनुभव करना है, इस सन्मार्ग की जिसको श्रद्धा करना है और उस सन्मार्ग को जिसको प्राप्त कर लेना है, ऐसे आत्मार्थी जन को, या आत्मार्थी जन को होता है, दूसरे को ऐसा सन्मार्ग जानने को नहीं आता है, प्रतीत में नहीं आता है, विश्वास नहीं आता है और प्राप्ति भी नहीं होती है। जो एकांत आत्मार्थी है, क्या एकांत आत्मार्थी, अर्थ मैंने प्रयोजन, आत्म प्राप्ति के सिवा दूसरा कुछ भी प्रयोजन नहीं हो, ये कंडीशन है। पूरा संसार को गौण करना होगा, भीतर में तैयारी है कि नहीं है देख लेना, और संसार में भी, संसार जो भी प्रिय में प्रिय चीज है उनकी प्रीति छोड़नी होगी, देख लेना हमारी तैयारी है कि नहीं है। अगर हम हमारे प्रिय चीज की प्रियता नहीं छोड़ते हैं तो भी ये प्रिय चीज का वियोग निश्चित है। या तो हम चले जाएंगे या तो वो चले जाएंगे। अगर हम विवेक से वस्तु के स्वरूप में पदार्थ की भिन्नता समझ लें और आत्मार्थी हो जाए, एकांत आत्मार्थी हो जाए, एक आत्म प्राप्ति का ही प्रयोजन हो जाए, यानी अपने आत्मा को प्रिय कर लें, दूसरे की प्रियता में हमने हमारी प्रियता खोई है, खो दी है, अब हम हमारे स्वरूप को सर्व से अधिक प्रिय करें तो आत्मार्थी हो सकते हैं। ऐसे आत्मार्थी जन को क्या करना चाहिए, जहां तक वो सन्मार्ग का पता नहीं लगे, ग्रहण नहीं हो वहां तक, परम वितराग स्वरूप देव की उपासना करना, दूसरे देव की नहीं करना। एक ही देव होते हैं जो परम वितराग स्वरूप देव होते हैं, राग का एक कण भी हो वो देव तत्व नहीं है। परम वितराग स्वरूप देव की उपासना करना कैसे, परम भक्ति द्वारा, पूरी भक्ति से, स्वरूप नैष्ठिक निष्क्रह निर्ग्रंथ रूप गुरु है उसकी भी परम भक्ति से उपासना करना है। परम भक्ति सबों को लागू होती है, ऐसा नहीं किया कि वहां से कम भक्ति करना, वो बात नहीं है। ये स्वरूप में जो स्थिर है और स्वरूप में ही जिसकी निष्ठा है, निष्ठा मैंने श्रद्धा और स्थिरता है, ऐसा जो निष्प्रह, कुछ नहीं चाहिए जिसको, कुछ चाहिए
नहीं,
ऐसा निष्प्रह निर्ग्रंथ जिसको अंतर बाह्य कोई मोह की ग्रंथि नहीं हो, बाहर में किसी पदार्थ के साथ और अंतर में अपने विभावों के साथ कहीं भी ग्रंथि मैंने गांठ पकड़ नहीं हो किसी भी प्रकार के, इतने मुक्त है, निग्रंथ गुरु है उतने मुक्त है। इसलिए प्रवचन सार में कुंदकुंद आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य ने उसको मोक्ष तत्व कहा है। और कृपालु देव ने तो 249 पत्र में सत्पुरुष को भी साक्षात मोक्ष स्वरूप बोल दिया है। सत्पुरुष को भी साक्षात साक्षात मोक्ष स्वरूप बोला है, 249 पत्र है ना, देखो। पेज 287। पूर्व में हुए बड़े पुरुष महापुरुष का चिंतन कल्याणकारक है, दर्शन मोह को घटाता है। महापुरुष का स्वरूप का चिंतन करे, तीर्थंकर आदि पूर्व में हुए महा महापुरुष हो गए, तथापि ऐसा चिंतन स्वरूप स्थिति का कारण बन सकता नहीं है। स्वरूप में स्थिरता नहीं हो सकती, दर्शनों को मंद कर सकते, अभाव नहीं कर सकते, क्योंकि जीव को क्या करना है यह वैसे स्मरण से समझ में नहीं आता। प्रत्यक्ष योग बिना, देखो, सत्पुरुष के प्रत्यक्ष योग बिना, प्रत्यक्ष योग से, योग में, सत्पुरुष के प्रत्यक्ष योग में बिना समझाए मौन रहे तो भी स्वरूप स्थिति होना संभवित मानते हैं। परिणमन का प्रयोग नहीं देखा तो वो वाणी की मर्यादा स्वरूप स्थिति कराने के लिए काम में नहीं आती। क्या पिन पॉइंट बात है, प्रत्यक्ष योग में बिना समझाए भी स्वरूप स्थिति होना संभवित मानते हैं, और इसलिए ऐसा निश्चय होता है कि यह योग का और प्रत्यक्ष चिंतन का फल, अंतिम फल मोक्ष होता है। जब इसका अंतिम फल मोक्ष होता है तो जिसके योग में यह घटना घटी ऐसा सत्पुरुष भी मूर्तिमान मोक्ष है। कारण कि ऐसा क्यों इसका फल मोक्ष होता है, कारण कि मूर्तिमान मोक्ष वह सत्पुरुष है। बहुत रहस्यमय बात कर दिया है प्रयोग की, कि प्रत्यक्ष योग में कौन सी ऐसी घटना घटती है कि जिसके फल में जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसी कौन सी घटना घटती है कि उनको उनका परिणमन देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष योग बिना ये जीवंत परिणमन देखने को नहीं मिलता। और जिसका परिणमन देखने से मोक्ष में, आखिर में मोक्ष में जीव चला जाता है, मैंने आखिर में मोक्ष उसको प्राप्त हो ही जाता है, तो ये सत्पुरुष ही मोक्ष स्वरूप हो गया, क्योंकि मोक्ष उपादान में मोक्ष कब हो सकता है कि निमित्त में मुक्तपना हो। तो निमित्त मोक्ष होता है तो उपादान में मोक्ष आएगा। इसलिए अज्ञानी की वाणी से और अज्ञानी के संग से किसी को भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ स्वरूप नैष्ठिक निष्प्रण निर्ग्रंथ रूप गुरु कहा, वहां छठे गुण स्थान वाला लिया, इधर वहां चौथे गुण स्थान वाले लिए 249। मूर्तिमान मोक्ष ले लिया, दोनों मोक्ष तत्व है। क्यों? के अंदर में भिन्न हो गए तो मुक्त हो गए, सही मुक्त है वो। अमृत चंद्राचार्य कहेंगे कि सही मुक्त मुक्त ही है। देखना है, प्रत्यक्ष चिंतन में देखना है। प्रत्यक्ष योग और प्रत्यक्ष चिंतन दो बात लिया ना 249 पद का, ये प्रत्यक्ष देखना है। उनके परिणमन को देखना है, कैसे देखते होंगे। कि उनका जो अंतर्मुख परिणमन हो रहा है और जिसको अंतरात्मा वृत्ति में अंतर्मुख होने की तीव्र अभिलाषा है उसको अंतरात्मा वृत्ति कहते हैं, उसको पहचान आती है। वो अंतर में टैली कर लेता है, जो परिणमन हुआ वैसे अंदर में वो टैली हो जाता है, सम्मत होता है ना। सम्मति कब होती है? किसी भी उपदेश की, किसी भी प्रसंग की, किसी भी बात की सम्मति माने स्वीकार कब होता है? वहां ज्ञानी को स्वीकार कर लिया, ज्ञानी का स्वीकार कर लिया कि यही सत्य है, मुझे जो चाहिए था, मुझे मेरा आत्मा चाहिए था, ये आत्म स्वभाव आत्म भाव प्रकट रूप से यहां दिखने में आता है, इसका स्वीकार हो गया। स्वीकार कब होता है? स्वीकार के भीतर में प्रक्रिया प्रोसेस कैसे चलती है? किसी भी बात का स्वीकार करो तब कि उसका विचार चल करके अंदर में टैली होता है कि नहीं ये ठीक है। खुद स्वीकार करता है, तुलना करके स्वीकार करता है, ये सत्य है या असत्य है, ठीक है या ठीक है। तो उनको जो चाहिए था वो देखने को मिल गया, देखने को मिलने से अंदर में उसका स्वीकार आया कि यही ठीक है, यही बराबर है, यही सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए, तभी मैं मुक्त होऊंगा। वो भिन्न हो रहे हैं, ऐसे भिन्न होते हैं, मैं हूं ऐसा भिन्न मैं हो जाऊं मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। वो तो साक्षात मूर्तिमान मोक्ष है ही। जब उसका भिन्नत्व देखा तो मूर्तिमान मोक्ष देखा, ऐसा भिन्नत्व अंतर में स्वीकृत हुआ तो लगा कि मेरा भी ऐसा ही होगा, तब वास्तविक पहचान होगी। यही परमार्थ संकेत का प्रत्यक्ष बीजभूत कारण है। जो निर्विकल्प परमार्थ सम्यक दर्शन होने वाला है उस जीव को यहां बीज बोया गया संकेत का, तो उसमें भेद ज्ञान को देखा और भेद ज्ञान की विधि वहां से उनको भी चालू हो जाएगी, तो प्रयोग उनको चालू हो गया। प्रयोग के दौरान उनको स्वरूप की पहचान आएगी तो दूसरा संकेत हो गया, फिर स्वरूप सम्मुख पुरुषार्थ चलेगा और स्वानुभूति संपन्न होगा तो परमार्थ तीसरा संकेत हो गया। सीधी सीधी डायरेक्ट लाइन चैनल पकड़ा दी है आत्मसिद्धि लिख करके, सम्यक दर्शन की डायरेक्ट चैनल दे दिया, जाओ।
आप जो बार बार अनुभव पद्धति पर भजन देते हैं, अनुभव पद्धति पर जो भजन देते हैं, अनुभव पद्धति
ये अनुभव पद्धति है। स्वरूप नैष्ठिक निष्क्रह निष्प्रह निर्ग्रंथ रूप गुरु, जो निग्रंथ गुरु है उनका तो दिखाव ही ऐसा है कि स्वरूप में जम गए हुए दिखते हैं और बाहर में इसको तिल तुष मात्र परिग्रह भी नहीं और इच्छा भी नहीं, उनकी कोई इच्छा दिखती नहीं है। दिखनी चाहिए, और परम दयामूल धर्म व्यवहार, धर्म व्यवहार कैसा होना चाहिए? परम दयामूल, स्वरूप की दया, स्वदया और पर दया, वो परम दया है। वास्तव में तो स्वदया है वही परम दया है, वो तो जिसका मूल है, ऐसा व्यवहार को पर दया वास्तव में व्यवहारिक दया कहने में आती है। कोई मूल्य नहीं है परदया, परदया के रूप में आज बचाएगा कल मारेगा, वो जो आज भी दूसरे जीव को बचाने का परिणाम करता है कल मारने का परिणाम करेगा, उसको खुद को भान नहीं रहेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, कतरखाना लगाएगा। स्वदया पहली होनी चाहिए, वही मूल दया है, परम दया मूल धर्म व्यवहार, आत्मकल्याण की निज निज दया पूर्वक के धर्म व्यवहार होना चाहिए। जो भी धर्म का व्यवहार हो उसमें पहले अपने आत्मा की अहिंसा, वो बात पहले आनी
चाहिए,
वही परम धर्म है, निज स्वरूप की अहिंसा। जी हाँ, देव गुरु शास्त्र के नहीं लिया, देव गुरु और धर्म, धर्म ले लिया, वो शास्त्र लिया ना, अभी शास्त्र भी लेंगे। और परम शांत रस रहस्य वाक्यमय सत्शास्त्र, सत्शास्त्र उतना शब्द नहीं लिया, सत्शास्त्र की विशेषताएं कैसी होती है के जिसमें वचन होते हैं, शास्त्र में क्या होते हैं? वचन होते हैं। कैसे वचन होते हैं? के परम शांत रस का रहस्य जिसमें भरा हुआ हो वैसा रहस्य, रहस्य मैंने सीक्रेट, आत्मा को परम शांत रसमय परिणाम हो जाए उसका रहस्य खोल दें, ऐसे जिसके वचन हैं, ऐसे वचन वाले ग्रंथ को सत्शास्त्र कहने में आता है। वो ज्ञानी की वाणी से लेकर के मुनियों की वाणी है तो सब सत्शास्त्र है। तीर्थंकर तो की वाणी का तो कहने की जरूरत है ही नहीं, उसको दिव्य ध्वनि भी कहते हैं, जो दिव्य आत्मा के दिव्य स्वरूप को प्रकट रूप से दर्शा सकते हैं, ऐसे वचन को दिव्य ध्वनि भी कहने में आते हैं।
यानी कि दिव्य ध्वनि है,
दिव्य ध्वनि, वो तो गुरुदेव भैंसरी के वचनामृत पढ़ते पढ़ते वो बात कहते थे, देखो ये जिनवाणी है यही दिव्य ध्वनि है, तीर्थंकर के ध्वनि में वही बात आई है, कहते थे बराबर। परम शांत रस रहस्य वाक्यमय सत्शास्त्र सन्मार्ग की संपूर्णता होने तक, सन्मार्ग प्राप्त होने तक नहीं, संपूर्ण मार्ग पूरा होकर के मोक्ष फल नहीं हुए, मैंने पूरी साधक दशा, साधक दशा का प्रारंभ से लेकर अंत तक परम भक्ति द्वारा उपासना योग्य है, परम भक्ति से उसकी उपासना करना, बिना भक्ति हम ज्ञानी के संग में जाते हैं, भक्ति है कि नहीं है वो पहले बताओ, हम शास्त्र सत्शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति है कि नहीं वो पहले बताओ, शास्त्र भक्ति, गुरु भक्ति और देव भक्ति, परम भक्ति होनी चाहिए। परम भक्ति का मतलब वो है कि हमारे व्यक्तिगत पर्सनल बात सब गौण है, इसके आगे देव गुरु शास्त्र जितनी मुख्य कोई चीज जीवन में नहीं है, हमको सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा मतलब अनुकूलताएं नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन हमको देव गुरु शास्त्र तो चाहिए चाहिए और चाहिए ही, और उसके योग के लिए हमको अनुकूलता को गौण करना मंजूर है, प्रतिकूलता का स्वीकार करना हमको मंजूर है। जो आत्मकल्याण के परम कारण है ऐसी उपासना करना, देव गुरु धर्म और शास्त्र की उपासना करना, यह आत्मकल्याण का परम कारण है, उसके सिवा दूसरे निमित्त आत्मकल्याण के नहीं है। यहाँ पर एक स्मरण संप्राप्त हुई गाथा लिख करके यहाँ इस पत्र को संक्षेप कर देते हैं, यानी एक गाथा लिख करके पत्र को पूरा कर देते हैं। ये गाथा है अष्ट प्रावृत में भाव प्रावृत के 8 नंबर की गाथा है, ये जो गाथा का उद्धरण किया है वो कुंदकुंद आचार्य का जो अष्ट प्रावृत है उसमें जो भाव प्रावृत है उसके 8वें नंबर की गाथा है। प्रत्यक्ष योग का कोई बराबरी है ही नहीं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, टेप क्या वीडियो भी नहीं है, वो चर्चा चली थी भैंसरी के पास के अब तो गुरुदेव स्वर्ग में पधार गए हैं, अब हम गुरुदेव की वाणी जो है वो टेप से सुनते हैं तो हमको देशना लब्धि की प्राप्ति या बीज ज्ञान की प्राप्ति या संस्कार की प्राप्ति होवे कि नहीं होवे, वो चर्चा चली थी। भैंसरी को गुरुदेव के प्रति अमाप भक्ति थी, फिर भी भक्ति के बस वो बात नहीं कही कि नहीं हो सकता, सिद्धांत ना बोलता है, तो फिर प्रश्न उठाया कि टेप को छोड़ो, वीडियो टेप हम सुने तो भी नहीं, प्रत्यक्ष मैंने प्रत्यक्ष ही चाहिए, प्रत्यक्ष का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। देखिए भले ही बोले कुछ नहीं, इनकी उपस्थिति यानी पुरुष की उपस्थिति विद्यमानता पूरा एनवायरनमेंट को बदल देती है। आज देखो गुरुदेव मौजूद थे, वो सोनगढ़ था, आज मौजूद नहीं है, वो भी सोनगढ़ तो सोनगढ़ है, कितना फर्क दिखता है। जैसे कोई चेतना थी वहां, गुरुदेव थे तो कोई चेतना थी वहां, ऐसा लगता था। तो गुरुदेव नहीं है तो इसकी बराबरी नहीं हो सकती। क्या आज नहीं है तो चलो हम टेप सुन लेंगे, हम वीडियो देख लेंगे, नहीं चलता, उसकी बराबरी हो ही नहीं सकती। विद्यमानता वो विद्यमानता है, प्रेजेंट वो प्रेजेंट, और एब्सेंट वो एब्सेंट, बात खत्म हो गई। विद्यमानता में पूरा वातावरण बदल जाता है। अरे गुरुदेव यात्रा में पधारते थे तो सोनगढ़ में कैसा लगता था, जैसे कुछ है ही नहीं इधर, और आ गए स्वागत करते थे, चेतना चेतना सब चेतन जीवंत हो जाता था, सब सब चीज जीवंत दिखती थी वहां। बहुत बड़ा फर्क होता है विद्यमानता का, बहुत बड़ा फर्क, उसकी बराबरी हो ही नहीं सकती। वो तो है, तो उस वक्त हम दूसरे कृपालु देव के आश्रम में जाते थे, अगास वगैरह, ये महसूस होता था कि सोनगढ़ में एक समर्थ पुरुष है, अलग बात है, यहाँ सब कुछ है लेकिन कोई समर्थ पुरुष नहीं है। ग्रंथ है, एकांत है, हाँ, निवृत्ति क्षेत्र अवश्य है, लेकिन कोई चेतना नहीं है, ऐसा लगता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है,
कोई शरीर है, कोई मकान है, कोई घर है, कोई परिवार है, आत्मा नहीं है, कोई
आत्मा नहीं है तो सब कुछ नहीं है। आप मुआ तो डूब गई
दुनिया,
दुनिया ऐसी बात है। क्या कहते हैं गाथा में कि भीषण नर नर गईये, तिरे गईये, कुदेव मणु गईये, पत्तों से तीव्र दुखम, भाव ही जिन भावना जीव। भयंकर नरक गति में, तार गति में भयंकर परिभ्रमण किया है। परिभ्रमण को क्या विशेषण दिया है, भयंकर दुख वाला परिभ्रमण है। भयंकर नरक गति में, भयंकर तिर्यंच गति में, और माठी देव और मनुष्य गति, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को देव गति मिलती है तो माठी मिलती है, वो हल्का देव होता है। और मिथ्या दृष्टि में भले नवमी ग्रेवक जाए तो भी वो माठी देव गति है। क्यों, कि वहां भी वो दुखी होएगा, देव में जाकर के दुखी दुखी होगा। तथा माठी मनुष्य गति में, मिथ्यात्व सहित का मनुष्यपना है, वो भी बुराई है, क्योंकि वहां जीव ज्यादा कर्म को, अधिक कर्म को बांधता है। ये जीव तू तीव्र दुख को प्राप्त हुआ, चारों गति में तुम तीव्र दुख को प्राप्त हुआ, कहीं भी सुखी नहीं हुआ है, कहीं भी सुखी नहीं हुआ है। कभी कल्पना का सुख थोड़ी देर तक मान लिया, लेकिन दूसरी उपाधि के साथ, बिना उपाधि दिखाओ एक जीव को, बहुत तीव्र दुख को प्राप्त किया। इसलिए अब तो जीन भावना, भाव जीन भावना मैंने जीन भगवान जो परम शांत रस के परिणमन करके स्वरूप हुए, ऐसे परम शांत स्वरूप की चिंतना को जिन भावना कहते हैं। जिन भावना में ब्रैकेट लेकर के स्वरूप भावना लिया है, जिन स्वरूपी आत्मा, जिन स्वरूपी आत्मा को लिया है वो। तो जिन भावना मैंने जिनेश्वर का भजन उतनी बात मर्यादित नहीं लिया, अपना स्वरूप की भावना को मुख्य किया। देव गति में अच्छी सुख सुविधा होती है तो दुखी क्यों होता है, प्रश्न है। देख देव गति में भी देखो दुखी हुआ लिखा ना, तो वहां भी पुण्य योग से देव गति में जाता है, और इससे ऊपर वाले ज्यादा पुण्य वाले भी देव वहां होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि हमारे पास जो संपत्ति पुण्य योग से आती है उसे हम गौण कर देते हैं, और क्या देखते हैं हम कि हमारे सगे संबंधी पड़ोसी कौन हमारे से ज्यादा है, अधिक पुण्यवान है, उनके यहाँ क्या क्या संपत्ति है, हमारे पास नहीं है, ऐसी कौन सी बात उनके पास है, उसकी जलन हुए बिना नहीं रहती, कभी विकल्प रूप से कभी बिना विकल्प भी ईर्ष्या हो जाती है। क्यों कि जीव को ये प्राप्ति की वांछा है, जिसको थोड़ा चाहिए उसको अनलिमिटेड कितना चाहिए इसकी कोई अभिप्राय में मर्यादा हुई नहीं, होती नहीं। जब अभिप्राय में पूरा जगत चाहिए, एक परमाणु चाहिए उसको पूरा जगत चाहिए, ये परिस्थिति है, तो जो नहीं है उसकी वांछा रहेगी, और जिसके पास होगा इसकी ईर्ष्या हुए बिना रहेगी नहीं। सम्यक ज्ञान बिना इसका कोई समाधान नहीं है, ये असमाधान का दुख, ईर्ष्या का दुख, वांछा का दुख। देवगति में भी है, क्योंकि वहां भी ऊपर वाले देव सुखी होते हैं, और कितने को देव को तो अनुचर के रूप में काम करना पड़ता है। जैसे यहाँ मिनिस्ट्री में जाता है तो मिनिस्टर दो तरह का, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है और बिना कैबिनेट वाला भी मिनिस्टर होता है। तो एक बिना कैबिनेट वाला मिनिस्टर भाषण दे रहा था भावनगर में, हम सुन रहे थे, कोई ऐसे व्यापारियों को भाषण दे रहे थे, वो चैम्बर का कोई मीटिंग था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। हम भी एक दिन, ऐसे तो नहीं जाते, एक दिन सुनने का हो गया, घर के बगल में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में था। वो क्या बोलता था अपना जो कैबिनेट मिनिस्टर था ना, उनके लिए वो क्या बोला, मेरे बॉस ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं वो, तो उनको बॉस मानता है, और बॉस बॉसिज्म करता है। महादेव में भी वो चलता है, जो ऊपर का पुण्य वाला है वो नीचे के पुण्य वाले को अनुचर बनाता है, चलो तुम ऐसा करो, चलो हमारे साथ, हमको इधर जाना है, हमारे साथ चलो, जैसे नौकर के साथ ले जाते हैं ना, ऐसा वहां भी होता है। जो अधिक पुण्य वाले हैं वो नीचे के पुण्य वाले के प्रति जिस प्रकार का वर्ताव रखता है, ऐसा वर्ताव कोई पसंद करता है क्या?
नहीं।
हमारे माथे कोई हमको हुक्म करे तो हम पछाते हैं क्या? नहीं। फिर भी जो अधिक पुण्य वाला है उनका वो रहता है, वो दर्जा उनका रहता है, उनकी ईर्ष्याएं बिना रहती नहीं है, इसलिए वह बहुत दुखी होता है। यहाँ जो जलन होती है ना, इससे ज्यादा जलन देवलोक में होती है, बहुत होती है। मूल कारण है अपना परिपूर्ण स्वरूप का अस्वीकार, मैं अधूरा हूं इसलिए मुझे वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए और मैं परिपूर्ण हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं मुझे, पूर्ण को अपेक्षा क्या, इस जगत में से मुझे कोई चाहिए कोई चीज चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई चीज काम की है भी नहीं। बिना किसी के अभी ही पूर्ण हूँ, जो भी संयोग है वो फालतू के हैं, मेरे काम के नहीं है, ऐसे बात हो जाती है। नहीं उसके उसको भी इसके अधिक वाला दिखता है, उसको भी इसके अधिक वाला, यहाँ जैसे होता है वैसा ही, यहाँ पैसे वाले को दूसरे पैसे वाले दिखते हैं, अधिक पुण्य वाले को टाटा बिरला दिखता है, टाटा बिरले वाले को फोर्ड हेनरी वो दिखते हैं, कौन कितने हैं इसको मालूम नहीं है, लेकिन कल्पना तो कर लेते कि ये मेरे से अधिक है, वो मेरे से अधिक है, वो मेरे से अधिक है, उसकी जलन उसको रहती है कि मेरा नंबर सबसे आगे आ जाए, लेकिन वो संभव नहीं है। हाँ सबसे अधिक वाला वो दूसरे को अधिक मानने लगता है, कल्पना करता है, यहाँ जैसे मनुष्य करता है वैसे वहां भी होता है, और सबसे अधिक वाला सर्वार सिद्धि है, वो तो सम्यक दृष्टि है, तो उनको तो असमाधान है ही नहीं, तो बात बदल जाती है वहां, तो उसको असमाधान होता ही नहीं। इसलिए हे जीव तुम अपना स्वरूप की भावना भाव स्वरूप का चिंतन कर के जिससे ऐसे अनंत दुखों का आत्यांतिक वियोग होकर के परम अव्याबाद सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जा, ऐसा कर ले तुम, तीन लोक का नाथ बन जाओगे तुम, फिर तुमको किसी ऊपर वाले को देखने का रहेगा। देखो परिभ्रमण के बात किया, लिखते 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 परिभ्रमण का बात किया कि देखो कि परिभ्रमण को तुम देखो और अपना स्वरूप की भावना में आ जाओ, परिभ्रमण को देखेगा वही स्वरूप की भावना में आएगा, जो उसको परिभ्रमण नहीं दिखेगा वो स्वरूप की भावना कैसे में कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। यहाँ पत्र समाप्त होता है।